नमस्कार मित्रों और भाइयों, मैं डॉक्टर बॉब थील हूं, कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड से। आज मैं आप सभी से सच्चे ईसाई पश्चाताप के बारे में बात करना चाहता हूं। बाइबल, उदाहरण के लिए प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक में, सिखाती है कि यदि आप ईसाई बनना चाहते हैं तो आपको पश्चाताप करना होगा। लेकिन क्या आप पश्चाताप को समझते हैं? क्या यह वास्तव में चिंता का विषय है? यदि आप पहले से ही ईसाई है, तो यह एक ऐसा विषय है जिस पर आपको ध्यान देना होगा, और यदि आप ईसाई नहीं है, तो यह एक ऐसा विषय है जिससे आपको निपटना होगा। चलिए सबसे पहले पश्चाताप की शब्दकोश परिभाषा देखते हैं। यह परिभाषा अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी से ली गई है। इसके अनुसार पश्चाताप का अर्थ है अपने अतीत के आचरण के लिए आत्मनिंदा, पश्चाताप या खेद महसूस करना, पाप या गलती के लिए इतना दुख महसूस करना कि व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हो। बाइबल की परिभाषा में यह सब और इससे भी अधिक शामिल है। यीशु का संदेश पश्चाताप का था और उन्होंने सचमुच यही कहा था। उनका मतलब था कि सचमुच पश्चाताप करो, न कि केवल भावनात्मक अनुभव या बेचैनी महसूस करो। इस दुनिया में एक ऐसा दुख है जो पूरी तरह से मानवीय और शारीरिक है, जो भावनात्मक है, और बाइबल कहती है कि यह वास्तव में मृत्यु की ओर ले जाता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण मानवीय भावना, जो कुछ लोगों को रोने या आंसू बहाने के लिए प्रेरित करती है, और ईश्वरीय दुख, जो सच्चे पश्चाताप की ओर ले जाता है, में क्या अंतर है? लूका 13 में यीशु ने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी नाश हो जाओगे। एक खोई हुई भेड़ और 99 भेड़ों के दृष्टांत में यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी प्रकार स्वर्ग में एक पापी के पश्चाताप करने पर 99 धर्मी लोगों की अपेक्षा अधिक आनंद होगा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। अब मैं एक पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बास्केटबॉल कोच हैरान रह गया। उसकी टीम के एक खिलाड़ी ने गेंद छीन ली थी। मुझे पता है कि अगर आप अमेरिका से नहीं हैं, तो शायद आप बास्केटबॉल से पूरी तरह परिचित न हों। मूल रूप से इसमें गेंद को उछाला जाता है और उसे एक तरफ या दूसरी तरफ बने घेरे में डाला जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस टीम के लिए खेल रहे हैं। उत्साह में आकर उस खिलाड़ी ने, जिसने दूसरी टीम के किसी खिलाड़ी से गेंद छीनी थी, गलत बास्केट की ओर ड्रिबल करना शुरू कर दिया। कोच चिल्लाया, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, रुको, मुड़ो, दूसरी तरफ जाओ। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खिलाड़ी ने नहीं सुना। उसने गोल तो कर दिया, लेकिन गलत टीम के लिए। जिस प्रकार इस खिलाड़ी को रुकने और मुड़ने के लिए कहा गया, उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्यों को रुकने, मुड़ने और बदलने के लिए कहा है। बाइबल में इसे पश्चाताप का सिद्धांत कहा गया है। अब मैंने एक और कहानी सुनी है उन मजदूरों के बारे में जो एक निर्माण परियोजना के लिए जंगल से पेड़ काट रहे थे। वे बहुत मेहनत कर रहे थे, तभी एक नेता आया और चिल्लाया, रुको, गलत जंगल। लेकिन वहां मौजूद किसी ने कहा, हम अभी नहीं रुक सकते, काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन यह गलत कदम था। वे गलत दिशा में जा रहे थे और उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बदल नहीं सकते। इस मामले में फोरमैन को लगा कि हमने इतनी मेहनत की है, हमें इसी दिशा में आगे बढ़ते रहना होगा। कुछ लोग पारिवारिक कारणों, परंपरा, पारिवारिक संबंधों, काम या किसी और कारण का हवाला देते हैं। पश्चाताप क्या है? ईसाई दृष्टिकोण से पश्चाताप का अर्थ है प्राप्त करने के मार्ग, यानी शैतान के मार्ग से हटकर देने के मार्ग, यानी ईश्वर के मार्ग पर चलना। मैंने ऑनलाइन बाइबल में पश्चाताप के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द देखा जो कि मेटानोओ है। इसका संक्षिप्त अर्थ था पश्चाताप करना, अपना मन बदलना। एक विस्तृत अर्थ में आंतरिक परिवर्तन शामिल है, विशेष रूप से ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और पश्चाताप करना। फिर भी बहुत से लोग वास्तव में इसे नहीं समझते। वे सोचते हैं कि पश्चाताप केवल किसी बात पर खेद व्यक्त करना है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। पश्चाताप में वास्तविक परिवर्तन शामिल है, केवल दुख नहीं। और जो लोग पश्चाताप को नहीं समझते, वे आध्यात्मिक रूप से गलत रास्ते पर चलते रहते हैं। वे ईश्वर के आदेशों को अनदेखा करते हैं और उन्हें बदलने के लिए कहते हैं। लेकिन आपको इससे अनभिज्ञ रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे जानना आवश्यक है। यीशु ने पश्चाताप का उपदेश दिया, तो चलिए हम मरकुस की पुस्तक मरकुस के सुसमाचार अध्याय 1:14 से शुरू करते हैं। आज मैं जिन वचनों को पढ़ूंगा उनमें से अधिकांश बाइबल के न्यू किंग जेम्स संस्करण से होंगे। मरकुस 1:14 में लिखा है, यूहन्ना के कैद में डाले जाने के बाद यीशु गलील में आए और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए कहा, समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु लोगों से कह रहे थे कि वे बदले और अपना जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित कर दें। प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 में यीशु के स्वर्गारोहण के बाद मैं प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 की ओर चलना चाहूंगा। प्रेरित पत्रस ने पश्चाताप का उपदेश दिया। आइए देखें कि पत्रस ने वास्तव में क्या सिखाया। यह पेंटेकोस्ट के दिन की बात है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 2:38 से शुरू होता है। तब पत्रस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले और तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए और उन सभी के लिए है जो दूर है, उन सभी के लिए जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाएगा। आपको लग सकता है कि उन्होंने यह बात सिर्फ एक बार ही सिखाई होगी। चलिए अगले अध्याय में चलते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 3, हम 19 से शुरू करेंगे। इसलिए पश्चाताप करो और मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाए। यह सच है कि यीशु ने हमारे पापों का दंड चुकाया, लेकिन ध्यान दीजिए कि हमें पश्चाताप इसलिए करना चाहिए ताकि हमारे पाप मिट जाए, ताकि प्रभु की उपस्थिति से हमें शांति मिले और वह यीशु मसीह को भेजे जिसका उपदेश तुम्हें पहले दिया गया था, जिसे स्वर्ग में तब तक ग्रहण किया जाएगा जब तक कि सब कुछ का उद्धार न हो जाए, जिसके बारे में परमेश्वर ने जगत के आरंभ से अपने सब पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा है। पश्चाताप का अर्थ है अपने या शैतान के मार्ग पर चलने के बजाय परमेश्वर के मार्ग पर चलना। जाहिर है लोग यह नहीं सोचते कि वे शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो आप शैतान के मार्ग पर ही चल रहे हैं। शैतान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीने के लिए कौन सा मार्ग चुनते हैं, जब तक कि वह परमेश्वर का मार्ग न हो। परमेश्वर से अलग होकर जीने के अनेक मार्ग हैं, और मुझे नहीं लगता कि शैतान को इस बात की कोई विशेष चिंता है कि आप उनमें से कौन सा मार्ग अपनाते हैं। वह शायद कुछ मार्गों को दूसरों से ज्यादा पसंद करता हो, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते, मुझे लगता है कि वह इससे काफी खुश है। लेकिन हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। पश्चाताप तब होता है जब हम अपने पापों को देखते हैं, उनके लिए गहरा पश्चाताप करते हैं, पाप करना बंद कर देते हैं और परमेश्वर की आज्ञा मानने का संकल्प लेते हैं। हम उनके वचन पर विश्वास करते हैं और उनकी सहायता से वास्तव में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में पश्चाताप के बारे में ऐसी धारणाएं हैं जो बाइबल के सरल सत्य से काफी भिन्न है। कुछ लोग पश्चाताप की आवश्यकता नहीं समझते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, या वे दूसरों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वे मुझसे भी बुरे हैं, या यदि उन्हें लगता है कि उन्होंने पाप किया है तो वे वास्तव में यह नहीं मानते कि इसमें परमेश्वर की भूमिका आवश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें केवल कुछ सत्यों पर विश्वास करना या उन्हें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना है, लेकिन ये गलत धारणाएं हैं और ये परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं करती। जैसा कि मैंने पहले बताया, अंग्रेजी शब्द पश्चाताप मूलतः बाइबल के अन्य शब्दों का अनुवाद है, चाहे वह इब्रानी शब्द हो या यूनानी। जिन शब्दों से पश्चाताप का अनुवाद हुआ है उनका मूल अर्थ है मुड़ना या दिशा बदलना। बहुत से लोग थोड़ा बहुत झुक जाते हैं, लेकिन सच्चे पश्चाताप के लिए आपको पूरी तरह मुड़ना होगा। दिशा बदलने का अर्थ है कि आपको गलत रास्ते पर चलना बंद करना होगा और अंततः परमेश्वर के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना होगा। आपको परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा, लेकिन कोई व्यक्ति यह जान भी नहीं सकता या देख भी नहीं सकता कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है जब तक कि परमेश्वर उसका मन न खोल दे। सच्चाई यह है कि जब तक परमेश्वर आपको पश्चाताप का अवसर नहीं देता, आप पश्चाताप नहीं करेंगे। परमेश्वर द्वारा पश्चाताप का अवसर देने का यह अर्थ नहीं है कि आप पश्चाताप करेंगे ही, लेकिन यदि परमेश्वर ऐसा नहीं करता तो आप पश्चाताप नहीं करेंगे। आइए रोमियों की पुस्तक खोले और प्रेरित पौलुस द्वारा पश्चाताप के विषय में लिखी गई बातों को पढ़ें। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि पश्चाताप हमारी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की भलाई से होता है। तो चलिए रोमियों अध्याय 2 खोलते हैं। मैं पद 1 से पढ़ना शुरू करता हूँ। इसलिए हे मनुष्य, तुम चाहे जो भी हो, न्याय करने के लिए क्षमायोग्य नहीं हो, क्योंकि जिस बात से तुम दूसरे का न्याय करते हो, उसी बात से तुम अपने आप को दोषी ठहराते हो। क्योंकि तुम जो न्याय करते हो, वही काम तुम भी करते हो। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय उन लोगों के विरुद्ध सत्य के अनुसार होगा जो ऐसे काम करते हैं। पद 3, हे मनुष्य, तुम जो ऐसे काम करने वालों का न्याय करते हो और खुद भी वही करते हो, क्या तुम यह सोचते हो कि तुम परमेश्वर के न्याय से बच जाओगे? या क्या तुम उसकी भलाई, धीरज और सहनशीलता की संपत्ति को तुच्छ समझते हो, यह न जानते हुए कि परमेश्वर की भलाई तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाती है? परमेश्वर की भलाई आपको पश्चाताप की ओर ले जाती है। बाइबल यही कहती है। परमेश्वर की भलाई ही आपको पश्चाताप की ओर ले जाती है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि पश्चाताप परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रेरितों के कार्य 11:18 में लिखा है, उसने अन्य जातियों को जीवन के लिए पश्चाताप का अवसर दिया। अब आइए प्रेरित पौलुस द्वारा लिखित कुछ अंश पढ़ने के लिए द्वितीय तीमुथियुस की पुस्तक खोलें। यह द्वितीय तीमुथियुस अध्याय 2 है। मैं पद 24 से पढ़ना शुरू करूंगा। और यहोवा का सेवक झगड़ा न करे, बल्कि सभी के प्रति नम्र हो। वह सिखाने में सक्षम, धैर्यवान और नम्रता से विरोधियों को सुधारे, ताकि परमेश्वर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दे। इसलिए यदि परमेश्वर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दे ताकि वे सत्य को जान सके, तो परमेश्वर आपको पश्चाताप करने का अवसर दे ताकि आप सत्य को जान सके। आगे यह कहता है, और ताकि वे होश में आ जाएं और शैतान के जाल से बच निकले, क्योंकि वह उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बंदी बना चुका है। जो लोग ईश्वर के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वे शैतान के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। उन्हें यह बात पता नहीं है। वे यह नहीं कहते, मैं शैतान की पूजा नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ईश्वर के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो आप शैतान के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। शैतान का मार्ग ईश्वर के बताए मार्ग पर न चलना है। इसका अर्थ है अपने तरीके से चलना या परंपराओं और अन्य ऐसी चीजों से प्रभावित होकर चलना जो ईश्वर की इच्छा के विपरीत है। अब मैं स्वर्गीय डेनिस लूकर की कुछ रचनाएं पढ़ना चाहूंगा। वे पुराने वर्ल्ड वाइड चर्च ऑफ गॉड में प्रचारक थे। मुझे लगता है कि बहुत समय पहले मैं उनसे एक बार मिला था या उनसे बात की थी। खैर, उन्होंने लिखा है कि पश्चाताप दो प्रकार का होता है। एक ईश्वरीय पश्चाताप है जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। दूसरा सांसारिक पश्चाताप है जो केवल मृत्यु की ओर ले जाता है। वे लिखते हैं कि बहुत से लोगों को एक धार्मिक अनुभव हुआ। आमतौर पर इसे अपना हृदय प्रभु को समर्पित करना या मसीह के लिए निर्णय लेना कहा जाता है। लेकिन क्या यह बाइबल के अनुसार सच्चा पश्चाताप है? यदि आप इस लेख को ढूंढना चाहते हैं, तो यह ईश्वरीय पश्चाताप क्या है शीर्षक वाला लेख है, जो टुमारोज वर्ल्ड पत्रिका में अप्रैल 1972 में प्रकाशित हुआ था। सच्चा ईश्वरीय पश्चाताप किसी भावुक चर्च सेवा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होने वाली कोई चीज नहीं है। तो यह किसी उपदेशक की तरह नहीं है जो आपको भावनात्मक रूप से उत्तेजित कर दे और आप हां कह दे या पश्चाताप कर ले। सच्चा पश्चाताप, जैसा कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का वरदान है। यह ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर को ही व्यक्ति में प्रेरित करना होता है। उन्होंने कहा कि 2 तीमुथियुस 2:24-25 और प्रेरितों के काम 11:18 दोनों से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर को ही पश्चाताप प्रदान करना चाहिए। मैंने आपको वे अंश पहले ही पढ़कर सुना दिए हैं। सच्चा पश्चाताप मात्र एक भावनात्मक अनुभव से कहीं अधिक है। वह आगे चलकर अपने काल्पनिक पात्र जो ब्लॉक की कहानी सुनाते हैं। उन्होंने लिखा, जो ईश्वर में विश्वास करता था, या कम से कम वह ऐसा कहता था, वह नियमित रूप से चर्च जाता था, लेकिन सप्ताह के दिनों में कॉलेज के बच्चों के साथ मौज मस्ती करना और शराब पीना भी उसे पसंद था। वह मेहनती था और खुद को काफी अनुशासित रखता था, लेकिन शनिवार की रात आते ही वह खूब शराब पीकर जश्न मनाता था, जिसकी वजह से कभी कभी वह व्यभिचार कर बैठता था। वह जानता था कि यह गलत है, क्योंकि बाइबल में शराबखोरी और व्यभिचार दोनों की निंदा की गई है। रविवार की सुबह जब वह भयानक हैंगओवर के साथ होश में आता तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता। वह रोता और खुद से कसम खाता कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। वह उस दिन चर्च जाता और पश्चाताप करता। माना जाता है कि इससे उसे लगता था कि वह अगले सप्ताह तक ठीक रहेगा, लेकिन लगभग हर शनिवार की रात बूढ़ा जो फिर से शराब पीकर व्यभिचार कर बैठता, अगली सुबह उसे फिर से गहरा पछतावा होता और वह पश्चाताप करता। अगर आप बूढ़े जो को देख पाते तो आपको यकीन होता कि उसने सचमुच पश्चाताप किया है। वह इतना सच्चा था। वह बहुत रोता था। वह हर बार भगवान से क्षमा मांगता था और अपने पापों को स्वीकार करने और उनका प्रायश्चित करने के लिए चर्च जाता था। जो कि असली समस्या क्या थी? दरअसल यह सच्चा पश्चाताप नहीं था। उसका पश्चाताप केवल ऊपरी तौर पर था, वास्तविक नहीं। वह खुद पर तरस खा रहा था। वह सांसारिक दुख का अनुभव कर रहा था। उसे इस बात का दुख था कि वह जानता था कि उसे पाप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने पाप किया। वह इस बात से दुखी था कि पाप ने उसके साथ क्या किया था, न कि इसलिए कि उसने ईश्वर या किसी और के विरुद्ध पाप किया था। उसका पश्चाताप स्वार्थी था, और शायद हम सभी ने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया होगा। उसे केवल क्षणिक पश्चाताप, दुख और अपराधबोध का अनुभव हुआ। वह बार बार वही पाप दोहराता रहा। यदि जो को पता होता कि सच्चा पश्चाताप ईश्वर से आता है, तो वह पूरे दिल से प्रार्थना करता और ईश्वर से पश्चाताप करने में मदद मांगता। यदि जो वास्तव में हमेशा के लिए पाप करना छोड़ना चाहता, तो ईश्वर उसे ईश्वरीय पश्चाताप प्रदान करता। जो व्यक्ति सच्चे पश्चाताप की तलाश में है, उसे वह अवश्य मिलेगा, क्योंकि ईश्वर उसे देने के लिए तैयार है। फिर वे 2 पत्रस 3:9 के वचन से अपनी बात समाप्त करते हैं, जिसमें वे कहते हैं, परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने में रिलाई नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, परंतु वह हम पर धीरज रखता है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सब पश्चाताप करें, और जब परमेश्वर किसी को अपने सत्य की ओर बुलाता है, तो वह उसे पश्चाताप का अवसर प्रदान करता है। हमें सत्य की ओर तब तक नहीं बुलाया जा सकता जब तक परमेश्वर स्वयं हमारी नहीं, हमें बुलाने का निश्चय न करे। परमेश्वर उन्हें बुलाएगा जिन्हें वह इस युग में बुलाए जाने योग्य समझता है, और आशा है कि आप भी उनमें से एक है, विशेषकर यदि आप अभी सुन रहे हैं। हम यही आशा करते हैं। अब मैं यूहन्ना की पुस्तक के अध्याय 6 से पढ़ना चाहूंगा। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर को हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। खैर, यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यूहन्ना 6:43 से शुरू। इसलिए यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, आपस में बड़बड़ाओ मत। कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता, जिसने मुझे भेजा है, उसे अपनी ओर न खींचे, और मैं उसे अंतिम दिन जीवित करूंगा। भविष्यवक्ताओं में लिखा है, और वे सब परमेश्वर द्वारा सिखाए जाएंगे, इसलिए हर कोई जिसने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है। आइए एक बार फिर 5:44 पर लौटें। यीशु ने कहा, कोई भी, इसमें आप, मैं, आपके जानने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी अनजान व्यक्ति शामिल है, मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि मुझे भेजने वाला पिता उसे अपनी ओर आकर्षित न करे। अब अगर आप इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इससे प्रभावित हो रहे हैं, और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो परमेश्वर आपको बुला रहा है। वह आपको पश्चाताप की ओर ले जा रहा है, बस आपको उसका अनुसरण करना होगा। लेकिन बहुत से लोग बाइबल की शिक्षाओं का पालन नहीं करते। बहुत से लोग परमेश्वर द्वारा दिए गए बुलावे या इस युग में बुलाए जा रहे लोगों को दिए जा रहे अवसर के लिए आभारी नहीं है। जो लोग पहले ही बुलाए जा चुके हैं, उन्हें भी अलग तरह का पश्चाताप करना होगा। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वास्तव में सभी को परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। मैं नीतिवचन अध्याय 3 की ओर जाना चाहूंगा। मैं इसे अक्सर उद्धृत करता हूं और मुझे सच में लगता है कि इसे याद करना चाहिए, कम से कम पद 5 और 6, लेकिन मुझे लगता है कि नीतिवचन 3 का पूरा अंश पद 5 से 12 तक पश्चाताप के इस पूरे विचार के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। नीतिवचन 3 पद 5 से शुरू, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर भरोसा मत करो। लोग ऐसा करना पसंद नहीं करते। वे कहते हैं कि उन्हें ईश्वर पर भरोसा है। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे, जो का भी ईश्वर में विश्वास था, लेकिन पूरे दिल से नहीं, वह अपनी समझ पर ही निर्भर था। हम सब कभी न कभी यह गलती करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे आम आज्ञा कौन सी है जिसका उल्लंघन होता है? पहली आज्ञा। लोग हमेशा ईश्वर से पहले चीजों को रखते हैं। वे खुद को ईश्वर से पहले रखते हैं, अपनी समझ को ईश्वर से पहले रखते हैं, और उनकी समझ शैतान से प्रभावित होती है। आगे लिखा है, अपने सभी कामों में उसे मानो और वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लोगों को जो बात रोकती है वह है अगला भाग, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो। प्रभु का भय मानो और बुराई से दूर रहो। लोग सोचते हैं कि मैं बुरा नहीं हूं या मैं ईश्वर से पर्याप्त डरता हूं। बहुत से लोग अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होते हैं। शैतान लूसिफर था और उसने विद्रोह किया। पद 8, यह तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य देगा और तुम्हारी हड्डियों को शक्ति देगा। पद 9, अपनी संपत्ति से और अपनी सारी उपज के पहले फल से प्रभु का आदर करो। बहुत से लोगों में ऐसा करने का विश्वास नहीं है। वे बदलना नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं, आप नहीं समझते, मैं कुछ भी दान नहीं कर सकता, मैं मुश्किल से गुजारा करता हूं। अपनी संपत्ति से और अपनी सारी उपज के पहले फल से प्रभु का सम्मान करो। लोग इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते, वे पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। अगर वे ऐसा करेंगे तो पद 10 कहता है, तो तुम्हारे भंडार भरपूर अनाज से भर जाएंगे और तुम्हारे कुंड नई दाख मधु से लबालब भर जाएंगे। पद 11, हे मेरे पुत्र, प्रभु के दंड को तुच्छ मत समझ और नहीं उसके सुधार को नापसंद कर। बहुत से लोग परमेश्वर के सुधार को नापसंद करते हैं। परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर लोगों को आत्मनिरीक्षण करने और पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करने हेतु अनेक कार्य करता है, परंतु अनेक बार लोग ऐसा नहीं करते। वे नौकरी संबंधी समस्याओं, आर्थिक समस्याओं, पारिवारिक समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं या किसी भी अन्य प्रकार की समस्या या परिस्थिति को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर ही उन्हें दंडित कर रहा होता है। पद 12, क्योंकि जिसे प्रभु प्रेम करता है उसे वह सुधारता है। सुधार करना सुखद नहीं होता। नया नियम हमें इसके बारे में बताता है, लेकिन यह कहता है कि जिसे प्रभु प्रेम करता है उसे वह सुधारता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने प्रिय पुत्र को सुधारता है। जब परमेश्वर किसी को बुलाना शुरू करते हैं तो वे उन्हें दिखाते हैं कि वे गलत तरीके से जी रहे हैं और वे अपने कुछ पापों को समझने लगते हैं। और क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है, जैसा कि 1 यूहन्ना 3:4 में कहा गया है, परमेश्वर व्यक्ति के मन को परमेश्वर की व्यवस्था को समझने के लिए खोलकर पापों को दिखाते हैं। उनकी व्यवस्था उनके सत्य के मार्ग को परिभाषित करती है। परमेश्वर ऐसा संसार के पारंपरिक धर्मों में मौजूद गलतियों को दिखाकर भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के नियम को सचमुच समझता है, वह यह जान लेता है कि पश्चाताप से पहले वह वास्तव में उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने हमेशा परमेश्वर के नियम का पालन किया है। आपको इसे और गहराई से समझने की आवश्यकता है। आपने पाप किया है और आपको पश्चाताप करके परिवर्तन करना होगा। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने रोमियो 5:12 में लिखा है, सभी पाप करते हैं। उन्होंने रोमियो 3:23 में यह भी लिखा है, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए हैं। इसका अर्थ है कि आपने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए हैं। आप भी उन सभी में शामिल हैं। यह मत सोचिए कि आप अपवाद हैं। मुझे लगता है कि शैतान ने खुद को अपवाद समझा था। चलिए यूहन्ना अध्याय एक खोलते हैं। बहुत से लोग, जिनमें ईसाई भी शामिल है, यह नहीं समझते कि वे पाप करते हैं। पश्चाताप केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर के सच्चे चर्च में नहीं है। परमेश्वर के सच्चे चर्च में रहने वालों को भी पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यूहन्ना अध्याय एक के पद आठ को देखिए। यदि हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। इसे फिर से पढ़ते हैं। यदि हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। हम भले ही यह न कहें कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे हमें बदलने की जरूरत ही नहीं है। पद 9। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो वह विश्वासयोग्य और न्यायपूर्ण है कि वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सारी अधार्मिकता से शुद्ध करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। पद 10। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं रहता। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमारे भीतर नहीं है। हमें परमेश्वर के हर वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। पाप की उपस्थिति पश्चाताप की मांग करती है। परमेश्वर हमें तब तक क्षमा करने का वादा नहीं करता जब तक हम पश्चाताप न करें और बपतिस्मा न लें। हम सब पाप के गुलाम रहे हैं। आइए रोमियो अध्याय 6 में चलते हैं और प्रेरित पौलुस द्वारा लिखे गए उस वचन को पढ़ते हैं जिसमें क्षमा न किए गए पाप के फल यानी मृत्यु के बारे में बताया गया है। रोमियो 6 पद 20 से शुरू। जब तुम पाप के गुलाम थे, तब तुम धार्मिकता के विषय में स्वतंत्र थे। उन बातों से तुम्हें क्या फल मिला जिनसे अब तुम लज्जित होते हो? क्योंकि उन बातों का अंत मृत्यु है। परंतु अब पाप से मुक्त होकर और परमेश्वर के गुलाम बनकर तुम्हें पवित्रता का फल मिलता है और अनंत जीवन। पद 23। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। फिर भी बहुत से लोग पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं समझते। कुछ लोग उन अहंकारी यहूदियों की तरह हैं, जिनसे यीशु को निपटना पड़ा था, जो अपने पापों को नहीं देखते थे। इस विषय पर यूहन्ना 8:31-47 में चर्चा की गई है। अब आइए 51वें भजन की ओर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पापों को गहराई से समझ लेता है, तो उसे उनके लिए बहुत दुखी होना चाहिए। पश्चाताप केवल शोक नहीं है, बल्कि यह गंभीर भावनाओं और दुहक से भरा होता है। राजा दाऊद बातशेबा के पाप से इतने गहरे दुखी थे कि उनकी मनस्थिति इस भजन में झलकती है। भजन संहिता 51 के पहले पद से शुरू करते हुए दाऊद ने लिखा, हे परमेश्वर, अपनी कृपा के अनुसार मुझ पर दया करो। अपनी अपार दया के कारण मेरे अपराधों को मिटा दो। मुझे मेरे अधर्म से पूरी तरह धो डालो और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर दो। मुझे अच्छी तरह धो, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह धो। पद 3। क्योंकि मैं अपने अपराधों को स्वीकार करता हूं और मेरा पाप सदा मेरे सामने रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और तेरी दृष्टि में यह बुराई की है, ताकि जब तू बोले तो तू न्यायसंगत सिद्ध हो और जब तू न्याय करे तो तू निर्दोष सिद्ध हो। मुझे याद है, एक साल मैं एक गायन मंडली में थी। मैं कोई बहुत अच्छी गायिका नहीं हूं, यही एक कारण है कि मैंने उसमें भाग लेना बंद कर दिया। हमने इससे संबंधित एक गीत गाया, खासकर 10वें पद से शुरू करते हुए। तो चलिए मैं भजन संहिता के 51वें पद पर आती हूं। हे परमेश्वर, मेरे हृदय को शुद्ध कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा को नया कर। मुझे अपनी उपस्थिति से दूर मत कर और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले। तो हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और जिसने पाप किया है। आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के होते हुए भी पाप कर सकते हैं और आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। पद 12। मुझे अपने उद्धार का आनंद फिर से दे और अपनी उदार आत्मा से मुझे सहारा दे। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। पद 14। हे परमेश्वर, मेरे उद्धार के परमेश्वर, मुझे रक्तपात के अपराध से बचा और मेरी जीभ आपकी धार्मिकता का गुणगान करेगी। हे प्रभु, मेरे होंठ खोल और मेरा मुख आपकी स्तुति करेगा, क्योंकि आप बलिदान नहीं चाहते, नहीं तो मैं उसे दे देता। आप होमबलि से प्रसन्न नहीं होते, परमेश्वर के बलिदान एक टूटा हुआ मन है। हे परमेश्वर, आप टूटे हुए और पश्चात्तापी हृदय को तुच्छ नहीं समझेंगे। इस बात के लिए आभारी रहें कि ईश्वर आपको क्षमा करेगा, उसने आपके पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आइए अय्यूब अध्याय 42 में चलते हैं। अय्यूब इतना अच्छा व्यक्ति था कि परमेश्वर ने शैतान से कहा, अरे अय्यूब का क्या हुआ, तुम उस तक पहुंच नहीं पाए हो। शैतान ने कई बहाने बनाए और फिर परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब पर तरह तरह की कठिनाइयां और परीक्षाएं डालने की अनुमति दी, लेकिन अय्यूब की कुछ ऐसी कमियां थीं जिन्हें उसने पहचाना नहीं था। आखिरकार उसने पहचान लिया। अय्यूब अध्याय 42 पद 5 से अय्यूब ने कहा, मैंने आपके बारे में कानों से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें आपको देख रही है। इसलिए मैं अपने आप से घृणा करता हूं और धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। उन्हें पहले से ही ईश्वर के बारे में कुछ कुछ समझ थी, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह से समझ आ गई। मेरे मामले में इसका एक कारण वह वचन है जो मुझे आज भी अक्सर याद आता है। उत्पत्ति 1:01 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, यह तो सब जानते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ही आदि थे। मैं ऐसा नहीं मानता, आप भी नहीं मानते। नए नियम में जाइए। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, परमेश्वर ही है। धोखे में मत रहिए। शुरुआत में अय्यूब ईश्वर को ठीक से नहीं देख पाया था। आशा है कि तुम देख पाओगे और पश्चाताप करोगे। अब चलिए नए नियम में चलते हैं। इस बार प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 में मैं शाऊल नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहा हूं। आप उन्हें प्रेरित पौलुस के नाम से जानते हैं। मैं प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 से 1 पद पढ़ूंगा। शाऊल ने कलीसिया में तबाही मचाई। वह हर घर में घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीटकर जेल में डाल देता था। जेल में बंद लोगों को अक्सर मार डाला जाता था। इसलिए शाऊल एक बुरा व्यक्ति था। लेकिन चलिए अगले अध्याय, अध्याय 9 के पहले पद से शुरू करते हैं। देखते हैं क्या होता है। तब शाऊल, जो यहोवा के शिष्यों को धमकाता और जान से मारने की बातें करता रहा, महायाजक के पास गया और उसे दमिश्क के आराधनालयों के लिए पत्र मांगे, ताकि यदि उसे कोई भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री, यहोवा के मार्ग का मिले तो वह उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। वह सचमुच कलीसिया को नष्ट करना चाहता था। वह घृणा से भरा हुआ था और उसका मकसद भी यही था। पद 3, जब वह यात्रा कर रहा था, तब वह दमिश्क के पास पहुंचा। अचानक स्वर्ग से उसके चारों ओर एक प्रकाश चमक उठा। तब वह जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज सुनी जो उसे कह रही थी, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है। उसने सोचा कि वह यह सब करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। पद 5, तब शाऊल ने कहा, हे प्रभु, आप कौन है। तब प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। अंकुशों के विरुद्ध लात मारना तेरे लिए कठिन है। आजकल ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट और अन्य कई तरीकों से परमेश्वर के चर्च को बेरहमी से सताते हैं। उन्हें सच्चाई समझ नहीं आती, लेकिन शाऊल ने यह बात जल्दी ही समझ ली। पद 6, तब वह कांपते और अचंभित होकर बोला, हे प्रभु, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। यीशु ने कहा, उठो और नगर में जाओ और तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। और वह वहां चला गया। उसने 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, उसे दिखाई नहीं देता था और वह कुछ खाता पीता भी नहीं था। फिर दमिश्क से अनानियास नाम का एक चेला आया और परमेश्वर ने अनानियास से पद 11 में कहा, उठो और सीधे नाम की गली में जाओ और यहूदा के घर में टार्सस के शाऊल नाम के एक व्यक्ति के बारे में पूछो, क्योंकि देखो, वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने एक दर्शन में अनानियास नाम के एक व्यक्ति को अंदर आते और उस पर हाथ रखते हुए देखा है, जिससे उसे दृष्टि मिल गई है। इस प्रकार पौलुस उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और अंधा था। अनानियास ने कहा, हे प्रभु, मैंने बहुतों से इस व्यक्ति के विषय में सुना है कि उसने यरूशलेम में आपके संतों को कितना नुकसान पहुंचाया है, और वह यहां उन सभी को बांधने आया है जो आपके नाम का आह्वान करते हैं। परंतु प्रभु ने उसे कहा, जाओ, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है। तो आप सोचेंगे कि परमेश्वर शाऊल को क्यों चुनेगा? एक भयानक व्यक्ति जो ईसाइयों को मारता फिरता था, गिरफ्तार करता था, तबाही मचाता था और उसे ऐसा करने की कोई मजबूरी नहीं थी, उसने स्वेच्छा से ऐसा किया। वह महायाजक के पास गया और ऐसा करने के लिए और अधिक अधिकार मांगा। इसलिए अनानियास गया और उसने वही किया जो उसे करने को कहा गया था। फिर पद 18 में शाऊल को फिर से दृष्टि मिली, वह उठा और बपतिस्मा लिया और उसने दमिश्क में शिष्यों के साथ समय बिताया। वह यह जानना चाहता था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर पद 20 में उसने तुरंत आराधनालयों में मसीह का प्रचार किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। बहुत से लोग चकित हुए और कहने लगे, क्या यह वही नहीं है जिसने यरूशलेम में इस नाम से पुकारने वालों का नाश किया था और यहां उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाने के उद्देश्य से आया है? वह इन ईसाइयों को गिरफ्तार करने जा रहा था और अब वह स्वयं एक ईसाई बन गया था। वह बदल गया, उसने अपना मार्ग बदल लिया, उसने पश्चाताप किया। पद 22 में शाऊल और भी बलवान हो गया और उसने दमिश्क में रहने वाले यहूदियों को भ्रमित कर दिया, यह सिद्ध करते हुए कि यह यीशु ही मसीह है। वहां के यहूदियों ने सोचा कि वह आएगा और इन सभी लोगों को नष्ट कर देगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें यह सब बकवास लगा। वे इसे सुनना नहीं चाहते थे। यह एक बदलाव था, एक पूर्ण उलटफेर, एक नई दिशा। बाइबल के अनुसार पश्चाताप में यही होना चाहिए। शाऊल बदल गया। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि मेरे पाप बहुत बुरे हैं, भगवान मुझे क्षमा नहीं कर सकते। देखो शाऊल क्या कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि तुमने इससे भी बुरा कुछ किया होगा। खैर, पश्चाताप में बेशक पछतावा करना शामिल है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक गहरा है। एक दोषी शातिर अपराधी फांसी के रास्ते में अपराधबोध महसूस करता है, लेकिन यह सच्चा पश्चाताप नहीं है। यह केवल स्वार्थी अवसाद है, सजा के डर से उपजे आंतरिक तनाव का परिणाम है। ईश्वरीय पश्चाताप का अर्थ है पाप करना बंद करना और दूसरी राह पर चलना, अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना। क्षमा मांगना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन इसे दिल से महसूस करना और भी कठिन है। ईश्वरीय पश्चाताप हृदय से आना चाहिए, जैसे जैसे भगवान आपको मार्गदर्शन देते हैं। अब आइए प्रेरितों के कार्य अध्याय 17 में चलते हैं। परमेश्वर चाहता है कि सभी पश्चाताप करें और मैंने यह बात पहले पत्रस के दूसरे अध्याय से पढ़ी थी। प्रेरितों के कार्य 17 पद 22 से शुरू, पौलुस एरियोपैगस के बीच में खड़ा होकर बोला, हे एथेंस के लोगो, मैंने देखा है कि तुम सब बातों में बहुत धार्मिक हो, क्योंकि जब मैं वहां से गुजर रहा था और तुम्हारे उपासना स्थलों को देख रहा था तो मुझे एक वेदी मिली जिस पर यह लिखा था, अज्ञात परमेश्वर को। थोड़ी देर के लिए विषयांतर करते हुए, एक बार जब हम एथेंस में थे तो मेरी पत्नी और मैं गलती से वहां पहुंच गए थे। हम एक्रोपोलिस की ओर पैदल जा रहे थे। हमने एक जगह देखी और मैं एक चट्टान पर चढ़ गया जो थोड़ी फिसलन भरी थी। हमें सावधानी बरतनी पड़ी और मुझे पता नहीं था कि वह क्या है। बाद में मुझे पता चला कि वह एरियोपैगस था। तो हम बाद में वहां वापस गए और मैंने वह जगह देखी जहां पौलुस भाषण देते समय खड़ा था। उसने अपने श्रोताओं से जुड़ने की कोशिश की। उसने समझाया कि वे उसकी पूजा करते हैं जिसे वे समझते नहीं हैं। प्रेरितों के कार्य में आगे वह कहता है, मैं तुम्हें उसके बारे में समझाऊंगा। फिर उन्होंने उनसे कुछ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। वे श्लोक 28 में कहते हैं, तुम्हारे अपने कवियों ने कहा है हम उसकी संतान हैं। फिर वे श्लोक 29 में कहते हैं, चूंकि हम ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वरीय स्वरूप सोने, चांदी या पत्थर के समान है जो कला और मनुष्य की रचना से गढ़ा गया है। वास्तव में ईश्वर ने अज्ञानता के इन युगों को अनदेखा किया, परंतु अब वह सभी मनुष्यों को पश्चाताप करने का आदेश देता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर कोई पश्चाताप करे। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने कहा था कि परमेश्वर को आपको पश्चाताप की ओर खींचना होगा। यह सच है, लेकिन वह फिर भी चाहता है कि आप पश्चाताप करें, और यदि आप सुनने को तैयार है तो परमेश्वर आपको खींच लेगा। पद 31, क्योंकि उसने वह दिन नियुक्त किया है जिस दिन वह उस मनुष्य के द्वारा जिसे उसने चुना है धर्म से जगत का न्याय करेगा। उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर सबको इसका आश्वासन दिया है। स्पष्ट है कि यह यीशु के संदर्भ में है। अब आइए इब्रानियों की पुस्तक के अध्याय 6 को देखें। प्रेरितों के कार्य में पौलुस मुख्यतः अन्य जातियों, एथेंस में रहने वाले यूनानियों से बात कर रहा था। मसीहियों को भी अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप करना चाहिए। इब्रानियों 6 के पहले पद से शुरू होकर, इसलिए मसीह के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा को छोड़कर हम पूर्णता की ओर बढ़े। हमें पूर्णता की ओर बढ़ना है। यदि आप सिद्ध नहीं हैं और यदि आप अभी भी इस शरीर के वश में हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको अभी भी किसी न किसी प्रकार के पश्चाताप की आवश्यकता है। इब्रानियों 6 में आगे कहा गया है, मरे हुए कामों से पश्चाताप और परमेश्वर पर विश्वास की नींव फिर से न डालो। ध्यान दें, यह एक मूलभूत सिद्धांत है। मरे हुए कामों से पश्चाताप और परमेश्वर पर विश्वास का आधारभूत सिद्धांत है। फिर बपतिस्मा, हाथ रखने की रस्म, मरे हुओं का पुनरुत्थान और अनंत न्याय का सिद्धांत आता है। पश्चाताप ईसाई धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। इफ्राइम यूसुफ के दो पुत्रों में से एक था, जो इसराइल का पुत्र था, जो इसहाक का पुत्र था, जो अब्राहम का पुत्र था। परमेश्वर अपने लोगों इफ्राइम से बात करते हुए कहता है कि वह उनके पश्चाताप न करने के कारण उन्हें दंड देगा। इसलिए हम होशे 7:14-16 पढ़ेंगे। मुझे ठीक से याद नहीं कि यह कौन सा अनुवाद है। खैर, होशे 7:14 में इफ्राइम के बारे में लिखा है, जब वे अपने बिस्तरों पर विलाप कर रहे थे, तब उन्होंने अपने हृदय से मेरी ओर पुकार नहीं की। वे अनाज और नई दाख मधु के लिए इकट्ठा होते हैं। वे मेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। यद्यपि मैंने उन्हें अनुशासित और बलवान किया, फिर भी वे मेरे विरुद्ध बुराई की योजना बनाते हैं। वे लौटते तो है, परंतु परमेश्वर के पास नहीं। तो कुछ बदलाव तो हुआ, लेकिन पर्याप्त नहीं। भविष्य में राष्ट्रीय पश्चाताप के बिना यूसुफ के वंशज, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, विनाश की ओर अग्रसर है। उन देशों को राष्ट्रीय पश्चाताप की आवश्यकता है। मैं होशे की पुस्तक से कुछ और पढ़ना चाहूंगा, इस बार होशे अध्याय 11:3 से। मैंने एप्रैम को चलना सिखाया, 5, अश्शूरी उसका राजा होगा। अब अश्शूरी उसका राजा क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया, और तलवार उसके नगरों में वार करेगी, उसके क्षेत्रों को खा जाएगी और उन्हें नष्ट कर देगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ही योजनाएं बनाई है। मेरे लोग मुझसे विमुख होने पर तुले हुए हैं। यद्यपि वे परमेश्वर को पुकारते हैं, फिर भी कोई भी उसकी महिमा नहीं करता। अब ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि वे पश्चाताप करने से इनकार करते हैं, और इसका एक कारण उनकी अपनी सलाह है। दूसरे शब्दों में, वे बाइबल में लिखी बातों को नहीं सुनते, बल्कि अपनी या दूसरों की राय को मानते हैं। वे वास्तव में इस पुस्तक में लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। चलिए यशायाह 66 खोलते हैं। मैं 2 से पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये सब चीजें मेरे हाथ ने बनाई है और ये सब चीजें विद्यमान है, परमेश्वर कहता है, परंतु मैं केवल एक पर ध्यान दूंगा, उस पर जो दीन है, जिसका मन टूटा हुआ है, और जो मेरे वचन से कांपता है, परमेश्वर के वचन से कांपना, परमेश्वर के वचन के कारण बदलने को तैयार रहना, परमेश्वर के वचन से प्रभावित होना, न कि केवल यह सोचना कि मैंने यह पढ़ा, यह एक अच्छी कहानी थी, या मैंने बाइबल का वह भाग पढ़ा, वह अच्छा था, तो मैं ठीक हूं। नहीं, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अब आइए इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 में चलते हैं। आपकी बाइबल कहती है कि अनेकों ने दिखावटी तौर पर परमेश्वर की ओर लौटने का दावा किया, परंतु उन्होंने सच्चे मन से ऐसा नहीं किया। एप्रैम का पश्चाताप और संसार के अनेकों का पश्चाताप मात्र सत ही था। यह सांसारिक पश्चाताप था। यह सच्चे मन से या गहराई से नहीं किया गया था, और इसी कारण अश्शूरियों को उनका राजा बनाया जाएगा। मैं इस प्रवचन में इस विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। खैर, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12। बहुत से लोग याकूब के भाई एसाव की तरह पश्चाताप करते हैं। 14 से शुरू करते हुए, सब लोगों के साथ शांति और पवित्रता का पालन करो, जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा, और ध्यान रखो कि कहीं कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए। आप परमेश्वर के अनुग्रह से कैसे वंचित रह सकते हैं? ऐसा न हो कि कड़वाहट की कोई जड़ पनपकर विपत्ति उत्पन्न करे और इससे बहुत से लोग अपवित्र हो जाए। ऐसा न हो कि एसाव के समान कोई व्यभिचारी या अपवित्र व्यक्ति हो जिसने एक निवाले के लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेच दिया, क्योंकि तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष का वारिस बनना चाहा, तो उसे अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि उसने आंसुओं के साथ लगन से पश्चाताप की खोज की, फिर भी उसे पश्चाताप के लिए कोई स्थान नहीं मिला। किसी के रोने का मतलब यह नहीं कि वह पश्चाताप कर लेता है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत रोते हैं। ऐसा नहीं है कि आंसू बहाना अनुचित है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत रोते हैं, उनमें कोई खास बदलाव नहीं आता। यीशु मसीह की ओर लौटते हुए, मैं रेडियो चर्च ऑफ गॉड और वर्ल्ड वाइड चर्च ऑफ गॉड के दिवंगत पादरी जनरल हर्बर्ट आर्मस्ट्रांग द्वारा लिखित कुछ पढ़ना चाहूंगा। यह उनकी पुस्तिका पश्चाताप का क्या अर्थ है से लिया गया है। उन्होंने कहा, परमेश्वर की खोज करो। अपनी शक्ति से इन समस्याओं से लड़ने के बजाय हमें उस पाठ को सीखना चाहिए जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है। हमें उसकी खोज करनी होगी। उसे हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता है, और वह अब भी हमसे प्रेम करता है और हमें चाहता है। दानियल को दानियल 9:03 में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने की प्रेरणा मिली। मैंने उपवास, टाट और राख के साथ प्रार्थना और विनती द्वारा प्रभु परमेश्वर की खोज करने के लिए अपना मुख किया। नेहेमिया का उदाहरण भी हमारे लिए दर्ज है। आर्मस्ट्रांग ने लिखा है कि जब नेहेमिया ने अपने राष्ट्र को दुख और निंदा में पाया, तो उसने यह किया, जब मैंने ये शब्द सुने तो मैं बैठ गया और बहुत दिनों तक रोता रहा। मैं स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करता रहा। नेहेमिया 1:04। उसने तुरंत परमेश्वर के निकट आने का निश्चय किया। उसने यह आधे मन से नहीं किया, उसने इसे पूरी लगन और ईमानदारी से, पूरे मन से किया। उसने प्रार्थना और उपवास के द्वारा परमेश्वर और उसकी इच्छा को खोजने का निश्चय किया। इन लोगों में परमेश्वर की इच्छा को जानने की प्रबल इच्छा थी। वे उसके निकट आने और उसकी क्षमा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे आवश्यकता पड़ने पर भोजन और पानी के बिना रहने को भी तैयार थे। बहुत से लोगों में आस्था नहीं होती। वे कहते हैं कि उनमें आस्था है, लेकिन वास्तव में वे ईश्वर पर भरोसा नहीं करते और पूरे दिल से ईश्वर के पास नहीं आते। आर्मस्ट्रांग ने लिखा, क्षमा करना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है इसे पूरे दिल से महसूस करना। प्रार्थना और उपवास के माध्यम से ईश्वर से सच्ची विनती यह दर्शाती है कि आप वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। अब यह कर्म नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, आप जो कर रहे हैं वह तो केवल कर्म है। नहीं, यह ईश्वर को यह दिखाना है कि आप सच्चे हैं और वास्तव में उन पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर क्षणिक, क्षणभंगुर पश्चाताप नहीं चाहता जो भावनात्मक अपील या आसपास के लोगों के दबाव के कारण उत्पन्न होता है। उद्धार आपके और परमेश्वर के बीच का एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यह परमेश्वर की शर्तों पर ही होना चाहिए। पश्चाताप के इन चरणों और सूत्र को स्वयं पढ़ने के लिए 2 इतिहास 7:12-14 पढ़ें। और यहोवा रात को सुलेमान के सामने प्रकट हुआ और उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। मैंने इस स्थान को अपने लिए बलिदान के घर के रूप में चुना है। यदि मैं आकाश को बंद कर दूं और वर्षा न हो, या यदि मैं टिड्डियों को भूमि को चट करने का आदेश दूं, या यदि मैं अपने लोगों के बीच महामारी भेजूं, तो यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से पुकारे जाते हैं अपने आप को नम्र करें और प्रार्थना करें और मेरे मुख की खोज करें और अपने दुष्ट मार्गों से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनकी भूमि को चंगा करूंगा। आर्मस्ट्रांग ने कहा कि ये कदम बहुत सरल, स्पष्ट और सीधे साधे है। स्वयं को विनम्र करने का क्या अर्थ है? आप इसे ठीक कैसे करते हैं? ठीक उसी तरह जैसे दानियल और नेहेमिया ने किया था। दाऊद भजन संहिता 35:13 में बताते हैं कि आप स्वयं को कैसे विनम्र कर सकते हैं। परंतु जब वे बीमार थे तो मैंने टाट के वस्त्र पहने। मैंने उपवास द्वारा अपने मन को विनम्र किया और मेरी प्रार्थना मेरे हृदय में लौट आई। आर्मस्ट्रांग कहते हैं कि उपवास ईमानदारी और लगन को दर्शाता है। उन्होंने लिखा, हमें अपने बुरे मार्गों से मुड़ना होगा, हमें पाप करना बंद करना होगा। बहुत से लोग चर्च के सदस्य होने का दावा करते हैं। वे यीशु मसीह में अपने विश्वास का जोर शोर से ऐलान करते हैं। वे मसीह के लिए गवाही देते हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल दिखाई नहीं देता। अक्सर हमारा पश्चाताप वही सांसारिक पश्चाताप होता है जिसका जिक्र 2 कुरिन्थियों 7:10 में किया गया है। फिर वह योएल अध्याय 2 में जाते हैं। मैं पद 12 से शुरू करने जा रहा हूं। इसलिए प्रभु कहते हैं, अपने पूरे मन से उपवास, रोने और शोक करने के साथ मेरी ओर मुड़ो, इसलिए अपने वस्त्र नहीं, अपने हृदय को फाड़ो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर मुड़ो, क्योंकि वह कृपालु और दयालु है, क्रोध करने में धीमा है और बड़ी दया का है, और वह हानि करने से रुकता है। अब ईश्वर उस तरह का पश्चाताप नहीं चाहते जो दिखावटी पश्चाताप के रूप में प्रकट होता है। मुझे नहीं पता कि प्रोटेस्टेंट जगत में वे अब भी ऐसा करते हैं या नहीं, शायद करते हों। वे सिर्फ किसी चर्च की सदस्यता सूची में आपका नाम दर्ज करवाना नहीं चाहते। ईश्वर जो चाहते हैं और जो आपको ईमानदारी से करना चाहिए वह यह है कि आप अपने पापों को गहराई से स्वीकार करें और क्षमा की कामना करें। ईश्वर चाहते हैं कि आप क्षमा मांगें और दिल से ऐसा करें। वे चाहते हैं कि आप उनके नियमों को तोड़ना बंद करें और उनका पालन करना शुरू करें। हर्बर्ट आर्मस्ट्रांग ने 2 कुरिन्थियों 7 का जिक्र किया था, तो चलिए वहीं चलते हैं। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं क्योंकि पश्चाताप में अक्सर भावनाएं शामिल होती है। केवल भावनाएं या बिना किसी बदलाव के दुख पश्चाताप नहीं है। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 7 में इस विषय पर बात की है, जहां उन्होंने ईश्वरीय दुख और सांसारिक दुख के बीच अंतर बताया है। 8वें पद से शुरू करते हुए, यदि मैंने अपने पत्र से तुम्हें दुखी किया तो भी मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, यद्यपि मुझे अफसोस था, क्योंकि मैं समझता हूं कि उसी पत्र ने तुम्हें दुखी किया, यद्यपि थोड़े समय के लिए। अब मैं आनंदित हूं, इसलिए नहीं कि तुम दुखी हुए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे दुख ने तुम्हें पश्चाताप की ओर ले गया, क्योंकि तुमने ईश्वरीय तरीके से दुख किया ताकि तुम्हें हमसे किसी भी प्रकार की हानि न हो। तो पौलुस कहते हैं, देखो, मैं वास्तव में तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। यह अपने आप में मुद्दा नहीं था, मुद्दा यह था कि तुम पश्चाताप करो और तुम्हारे दुख ने तुम्हें पश्चाताप की ओर ले गया। यह अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वरीय दुख पश्चाताप उत्पन्न करता है जो उद्धार की ओर ले जाता है, और जिसका पश्चाताप नहीं होना चाहिए, परंतु सांसारिक दुख मृत्यु लाता है। इसलिए इस बात पर ध्यान दो कि तुमने ईश्वरीय रंग से दुख किया, इससे तुम में कितनी लगन उत्पन्न हुई, तुमने कितना आत्मशोध किया, कितना क्रोध, कितना भय, कितनी तीव्र इच्छा, कितना उत्साह और कितना आत्मपुष्टि। सब बातों में तुमने अपने आप को इस विषय में निर्दोष सिद्ध किया। सांसारिक दुख मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि यह केवल क्षणिक दुख, आत्मदया, दंड या अपमान के भय आदि की ओर ले जाता है। ईश्वरीय दुख आपको पाप से मुक्त करता है। आइए याकूब अध्याय 2 में चलते हैं। याकूब पद 18 में लिखते हैं, पर कोई कहेगा, तुम्हारा विश्वास है और मेरे कर्म है, मुझे अपने कर्मों के बिना अपना विश्वास दिखाओ और मैं अपने कर्मों से अपना विश्वास दिखाऊंगा। तुम मानते हो कि एक ही परमेश्वर है, यह अच्छा है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और कांपती है। परंतु हे मूर्ख मनुष्य, क्या तुम जानना चाहते हो कि कर्मों के बिना विश्वास तो मृत है? कर्म यह दर्शाते हैं कि तुम परमेश्वर के प्रति सच्चे हो। तुम उद्धार कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, परंतु इसके प्रति सच्चे रहना आवश्यक है। अब 1 यूहन्ना 3:10 से शुरू कीजिए। इसमें परमेश्वर के बच्चे और शैतान के बच्चे स्पष्ट होते हैं। जो कोई धर्म का पालन नहीं करता वह परमेश्वर का नहीं है, और नहीं वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। आपको धर्म का पालन करना होगा। भजन संहिता 119:172 कहता है, तेरी सब आज्ञाएं धर्म की है। कुछ लोग कहते हैं, मुझे उन आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल अच्छे काम करने हैं। वे बाइबल में लिखी कई बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। आइए मत्ती की पुस्तक के अध्याय 7:21 से शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि मुझे बस यीशु पर विश्वास करना है, और यह ठीक है, यीशु पर विश्वास करना अच्छी बात है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यीशु ने इसके बारे में क्या कहा। मत्ती 7:21 से शुरू, जो कोई मुझसे कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जो स्वर्ग में मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है, आपको स्वर्ग में पिता की इच्छा पूरी करनी है, न कि केवल यीशु को प्रभु कहना। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और आपके नाम से बहुत से चमत्कार नहीं किए? पद 23। और तब मैं उनसे कहूंगा, यह यीशु कह रहे हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, मुझसे दूर हो जाओ तुम जो अधर्म करते हो। यदि आप यह नहीं सोचते कि आपको परमेश्वर के नियमों का पालन करना है, या आप इस संबंध में बहुत चुनिंदा रवैया अपनाते हैं, तो आप अधर्म कर रहे हैं। अब बहुत से लोग खुद को परमेश्वर के लोग मानते हैं। मैं लूका 13 में वर्णित गलीलियों की कहानी नहीं पढ़ूंगा, जिनका खून बलिदानों के साथ मिला दिया गया था, लेकिन यीशु ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि ये लोग अन्य लोगों से अधिक पापी थे? पद 5। मैं तुमसे कहता हूं, नहीं, परंतु यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब भी उसी प्रकार नाश हो जाओगे। अब यीशु उन लोगों से बात कर रहे हैं जो खुद को परमेश्वर के लोग समझते थे। आइए लूका की पुस्तक के अध्याय 3 के 7वें पद से शुरू करते हैं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। तब उसने उन लोगों से कहा जो उससे बपतिस्मा लेने आए थे, हे सांपों के वंशज, तुम्हें आने वाले क्रोध से भागने की चेतावनी किसने दी? इसलिए पश्चाताप के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह न कहो, इब्राहिम हमारा पिता है। फिर उसने उनसे पश्चाताप करने और कुछ काम न करने को कहा। उसने लोगों को बदलने को कहा। उसने कर वसूलने वालों से लोगों को धोखा न देने और सैनिकों से लोगों को चोट न पहुंचाने, डराने धमकाने या झूठ न बोलने को कहा। उसने उनसे बदलने को कहा। अंत समय में अधिकांश ईसाई लाओदीकिया के होंगे। आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 देखें। मैं आज चर्च युगों के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मुख्य रूप से 7 चर्च युगों की चर्चा की गई है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 में 7 चर्चों का उल्लेख है। अध्याय 2 और 3 में इनके बारे में अधिक जानकारी दी गई है। और यद्यपि इन चर्चों की विशेषताएं पूरे चर्च युग में मौजूद रहीं, कुछ अन्य समयों में अधिक प्रमुख थीं। अंत समय में सबसे प्रमुख चर्च लाओदीकिया का होगा। तो प्रकाशित वाक्य 3 में आइए देखें कि यीशु ने उन्हें क्या लिखा। पद 14 से शुरू करते हुए, और लाओदीकिया के चर्च के दूत से ये बातें, आमीन, विश्वासयोग्य और सच्चा साक्षी, परमेश्वर की सृष्टि का आरंभिक कहता है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं कि तुम न तो ठंडे हो और न ही गर्म। यीशु ने कहा, काश तुम ठंडे या गर्म होते। अगर तुम ठंडे होते तो तुम्हें इसका एहसास होता, अगर तुम गर्म होते तो तुम वही कर रहे होते जो मैं चाहता हूं। पद 16। इसलिए क्योंकि तुम गुनगुने हो, न ठंडे हो और न गर्म, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। क्योंकि तुम कहते हो, मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और यह नहीं जानते कि तुम दुखी, दयनीय, गरीब, अंधे और नंगे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझसे अग्नि में तपाया हुआ सोना खरीदो ताकि तुम धनी हो जाओ, और सफ़ेद वस्त्र खरीदो ताकि तुम ढके रहो और तुम्हारी नग्नता की लज्जा प्रकट न हो, और अपनी आंखों में आंखों का मरहम लगाओ ताकि तुम देख सको। बहुत से लोग इसे नहीं समझेंगे। ये शब्द यीशु के हैं, जो वे यहां के ईसाइयों से, अंतिम समय के ईसाइयों से, अधिकांश ईसाइयों से कह रहे हैं। अब पद 19, जितनों से मैं प्रेम करता हूं मैं उन्हें डांटता और सुधारता हूं। वैसे तो लोगों को डांट या सुधार पसंद नहीं होता, लेकिन यीशु ने कहा है कि वह उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह यही कर रहे हैं। इसलिए उत्साह रखो और पश्चाताप करो। देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। जो जय पाएगा मैं उसे अपने सिंहासन पर अपने साथ बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैंने भी जय पाई और अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर बैठा। जिसके कान है वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लोग यह सुनना नहीं चाहते। लोग खुद को ईसाई समझते हैं। वे सोचते हैं कि वे ठीक है। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें बदलने की जरूरत है। पश्चाताप और प्रायश्चित एक ही चीज नहीं है। प्रायश्चित एक ऐसा कार्य है जो किसी अच्छे काम, दान, प्रार्थना या इसी तरह के किसी अन्य कार्य के माध्यम से अपने पाप का दंड चुकाने के लिए किया जाता है। रोम का चर्च और अन्य कई समूह जो मसीह में विश्वास रखते हैं, पश्चाताप को बाइबल में बताए गए तरीके से नहीं देखते। मैं माला जपने के बारे में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। मेरा पालन पोषण रोमन कैथोलिक धर्म में हुआ है। मुझे पता है कि कभी कभी जब आप पाप स्वीकार करते हैं तो वे आपको माला जपने के लिए कहते हैं, तो चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। माला जपने की मुख्य प्रार्थनाएं 10 बार हेल मैरी के क्रम में व्यवस्थित है। हेल मैरी कैथोलिक धर्म में सिखाई जाने वाली एक विशेष प्रार्थना है,
मुझे यह आज भी याद है।
इसके बाद लॉर्ड्स प्रेयर यानी मत्ती अध्याय 6 में यीशु द्वारा दी गई प्रार्थना की रूपरेखा और फिर ग्लोरी बी महिमा हो का पाठ किया जाता है। प्रत्येक क्रम के पाठ के दौरान, जिसे एक दशक कहा जाता है, माला के रहस्यों में से किसी एक पर ध्यान दिया जाता है जो यीशु और मरियम के जीवन की घटनाओं को याद दिलाता है। सामान्यतः एक सत्र में 5 दशक जपे जाते हैं। कभी कभी प्रत्येक दशक के बाद अन्य प्रार्थनाएं भी जोड़ी जाती है, विशेष रूप से फातिमा प्रार्थना। प्रेरितों के पंथ से पहले और 5 दशकों के अंत में हेल होली क्वीन पवित्र रानी की प्रार्थना की जाती है। कुल मिलाकर माला इन प्रार्थनाओं को सही क्रम में जपने में सहायक है, इसीलिए कैथोलिकों के पास माला होती है, लेकिन यह बाइबल के अनुसार नहीं है। इस तरह का कोई भी कार्य करना गलत है। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि माला जपने की प्रथा की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने मध्य युग के उत्तरार्ध में मरियम के दर्शन का दावा किया था। यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। यह मूल धर्म का हिस्सा नहीं था। प्रेरितों के पास माला नहीं थी, यीशु के पास भी माला नहीं थी। उन्होंने आपको इन प्रार्थनाओं को करने के लिए नहीं कहा। मत्ती 6 में जाइए। मैंने उल्लेख किया है कि वे जिन प्रार्थनाओं को करते हैं, उनमें से एक को वे प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। आइए देखें कि यीशु ने मत्ती 6 में प्रार्थना के बारे में क्या कहा है। पद 7, जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों की तरह व्यर्थ की पुनरावृत्ति न करो, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके बहुत से शब्दों से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। यद्यपि मत्ती 6:9-13 में यीशु द्वारा दी गई प्रार्थना की रूपरेखा हमें एक सामान्य जानकारी देती है, फिर भी प्रार्थना करने के लिए कुछ विशिष्ट बातें हैं। हम केवल रटेरटाए शब्दों का प्रयोग नहीं करते, यह पश्चाताप नहीं है। कुछ संस्कृतियों में वे एक पहिया घुमाते हैं जिससे माना जाता है कि प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है, या वे पहिए पर किसी प्रकार का पाल लगाते हैं जिससे हवा उसे घुमाती है। ईश्वर ऐसा नहीं चाहता। मैंने एशिया में एक बार इन चीजों को हवा में घूमते देखा था। यदि आप मन के गिनने की प्रणाली का उपयोग करते हैं तो वह भी ईश्वर की इच्छा नहीं है। याकूब 5:16 धर्मी लोगों की सच्ची और प्रभावशाली प्रार्थना के बारे में बताता है जो बहुत फलदायी होती है। बार बार एक ही बात दोहराना और उसे गिनना नहीं। होशे 7:14 कहता है कि ईश्वर चाहता है कि लोग पूरे दिल से प्रार्थना करें, न कि किसी जादूगर की तरह कुछ विशेष शब्द जपें। हाल ही में और मेरी पत्नी एम्स्टर्डम गए थे। तंबू पर्व के लिए जाते समय हमने एक मुफ्त पैदल यात्रा का विकल्प चुना। वे हमें एक गिरजाघर के पास से ले गए। यह गिरजाघर उन पैसों से बना था जो नाविकों ने एम्स्टर्डम आने पर दिए थे। वे शराब पीना और वेश्याओं के साथ समय बिताना चाहते थे। रोम के गिरजाघर और नाविकों के बीच एक समझौता हुआ। नाविक अग्रिम भुगतान कर सकते थे और उन्हें उनके किए गए कामों के लिए क्षमा कर दिया जाता था। इसे क्षमादान कहा जाता था। बाद में क्षमादान का अर्थ थोड़ा अलग हो गया, लेकिन उस समय यही चल रहा था। यह गिरजाघर एम्स्टर्डम के उस इलाके में है जिसे पहले रेड लाइट एरिया कहा जाता था। हम दिन के समय वहां थे। वहां कोई लाल बत्ती नहीं थी, कम से कम मुझे तो नहीं दिखी, इसीलिए तो मैं वहां गया था। अब आइए मत्ती 6:12 पर वापस चलते हैं। मसीहियों को प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी को पैसे देकर उनका कर्ज चुका दें या रटीरटाई प्रार्थनाएं दोहराएं। मत्ती 6:12 से शुरू होकर लिखा है, और हमारे कर्जों को क्षमा कर जैसे हम अपने कर्जदारों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि हमें शैतान से बचा, क्योंकि तेरा ही राज्य सामर्थ्य और महिमा सदा के लिए है। पद 14, क्योंकि यदि तू मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करेगा तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपको क्षमा करे तो आपको दूसरों को क्षमा करना होगा।
बाइबल कहती है कि यही करना है, यीशु ने भी यही कहा था। ये उनके शब्द हैं, मैं बस उनका अनुवाद कर रहा हूं।
आगे, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। बहुत से लोगों के लिए सब कुछ उनके बारे में ही होता है। उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, और उन्हें सांसारिक दुख भी होता है। बात इससे कहीं बढ़कर है, आपको दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 का कुछ भाग पहले ही पढ़ लिया है, मैं एक बार फिर वहीं जा रहा हूं। इस बार पद 36 से शुरू करते हैं, इसलिए इसराइल के सारे घराने को निश्चय ही पता चले कि परमेश्वर ने इस यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु और मसीह दोनों बनाया है। पद 37, जब उन्होंने यह सुना तो उनके हृदय में बहुत दुख हुआ, और उन्होंने पतरस और शेष प्रेरितों से कहा, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और तुम में से प्रत्येक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए और तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। तो आपको पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है कि आप करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 14 के पद 12 में लिखा है, संतों का धीरज देखो, ये वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास का पालन करते हैं। आपको परमेश्वर की आज्ञाओं और विश्वास का पालन करना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। मैं आपको यह भी बता दूं कि इन बातों का पालन करने का यह अर्थ नहीं है कि आप लाओदीकिया के अनुयायी नहीं हो सकते। प्रकाशित वाक्य 12:17 उन संतों के बारे में बताता है जिनके पास यीशु मसीह की गवाही है और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, और उन्हें परीक्षा की घड़ी से सुरक्षा नहीं मिलती। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3 में फिलाडेल्फिया के लोगों को सुरक्षा का वादा किया गया है। इस पर प्रकाशित वाक्य 12:14-16 में भी चर्चा की गई है। संतों को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और विश्वास रखना चाहिए। उद्धार के लिए आज्ञा पालन आवश्यक है, क्योंकि अधर्म का कोई विकल्प नहीं है। मैंने मत्ती 7:20-21 में यीशु के वचन पढ़े। एक यूहन्ना 3:18 में प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, आओ हम शब्दों या जुबान से नहीं बल्कि कर्म और सच्चाई से प्रेम करें। हमें वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए। सच्चा पश्चाताप केवल बाहरी स्वीकारोक्ति नहीं है, सच्चा पश्चाताप परमपिता परमेश्वर के प्रति होता है। आइए लूका की पुस्तक के अध्याय 14 को देखें। सच्चा पश्चाताप हृदय और मन में गहराई तक उतरता है। परमेश्वर बिना शर्त समर्पण चाहता है, अपने तरीके से जीने से परमेश्वर के तरीके से जीने की ओर, क्योंकि आप शैतान और अपनी वासनाओं से प्रभावित रहे हैं। लूका 14:26 से शुरू, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने पिता और माता, पत्नी और बच्चों, भाइयों और बहनों, हाँ, यहां तक कि अपने जीवन से भी घृणा नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। उनका तात्पर्य यह है कि आप उन्हें ईश्वर से अधिक प्रेम नहीं कर सकते। बहुत से लोग पारिवारिक बंधनों या परंपराओं के कारण फंसे हुए हैं, या सोचते हैं कि वे फंसे हुए हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम उनके शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें ईश्वर के प्रेम को इन सबसे ऊपर रखना होगा, और जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से कौन मीनार बनाने का इरादा करके पहले बैठकर यह हिसाब नहीं लगाता कि क्या उसके पास उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। बपतिस्मा लेने आने वाले लोगों को हम एक बात बताते हैं कि आपको इसके परिणाम को समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि ईश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आप उसके बताए मार्ग पर चले, पश्चाताप करें, बदले और एक अलग तरह का जीवन जिए। लूका 14 में आगे लिखा है, ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह उसे पूरा न कर पाए और उसे देखने वाले सब उसका उपहास करने लगे। इस व्यक्ति ने निर्माण शुरू किया और पूरा नहीं कर पाया।
या फिर कौन सा राजा दूसरे राजा से युद्ध करने जा रहा है और पहले बैठकर यह विचार नहीं करता कि क्या वह अपने 10,000 सैनिकों के साथ 20,000 सैनिकों के साथ आने वाले का सामना कर पाएगा, या फिर जब दूसरा राजा बहुत दूर हो तो वह एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर शांति की शर्तें पूछता है। पद 33। इसी प्रकार तुम में से जो कोई अपनी सारी संपत्ति का त्याग नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। लोग शायद यह तय कर ले कि वे परमेश्वर के चर्च का हिस्सा बनेंगे। वे कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे कुछ समय के लिए कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं कि यह बहुत कठिन है। वे यह नहीं करना चाहते। याद रखो, तुम में से जो कोई भी अपना सब कुछ नहीं त्यागता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। रोमियो अध्याय 12 में पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया के कारण तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य भेंट के रूप में प्रस्तुत करो, जो तुम्हारी उचित सेवा है। और इस संसार के अनुरूप न बनो, बल्कि अपने मन के नवीकरण द्वारा रूपांतरित हो जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की भली स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा को जान सको। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के लिए बलिदान होना चाहिए। इसका अर्थ है कि तुम्हें इसे परमेश्वर के तरीके से करना चाहिए, अपने तरीके से नहीं। आइए मत्ती अध्याय 6 में चलते हैं। यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो यीशु वादा करते हैं कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे। पद 31। इसलिए चिंता मत करो यह कहते हुए कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब चीजों की खोज करते हैं। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। हमें प्रतिदिन ईश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। सच्चा पश्चाताप मात्र एक बार की घटना नहीं है, नहीं इसका अर्थ पूर्णता प्राप्त करना है। आइए फिलिप्पियों अध्याय 3 पढ़ें। बपतिस्मा से पहले आवश्यक पश्चाताप वास्तव में हमारे जीवन के मार्ग से परमेश्वर के मार्ग की ओर मुड़ने पर केंद्रित है। यह एक बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन है। फिर भी बपतिस्मा के समय भी परमेश्वर हमारे सभी पापों को एक ही बार में प्रकट नहीं करते, नहीं हम तुरंत अपने सभी पापों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे हम परमेश्वर के मार्ग के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ते हैं, हम उन्हें देखते और उनसे संघर्ष करते रहते हैं। तो चलिए फिलिप्पियों 3:12 में चलते हैं। प्रेरित पौलुस ने लिखा, ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ पा लिया है या सिद्ध हो गया हूं, परंतु मैं आगे बढ़ता रहता हूं ताकि मैं उस चीज को पा सकूं जिसके लिए यीशु मसीह ने भी मुझे चुना है। पद 13। भाइयों, मैं अपने आप को ऐसा नहीं समझता कि मैंने सब कुछ पा लिया है, परंतु एक बात मैं करता हूं कि मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता रहता हूं। मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की ओर से मिले ऊंचे बुलावे के इनाम के लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता हूं। वह आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसे अपने बीते जीवन की कोई चिंता नहीं थी जब वह कलीसिया का हिस्सा नहीं था। अब आइए पत्रस के दूसरे अध्याय 3 में चलते हैं। पौलुस कहता है कि उसे अभी सब कुछ नहीं मिला था, वह सिद्ध नहीं हुआ था। पत्रस ने पद 17 से लिखना शुरू किया, इसलिए हे प्रियजनों, क्योंकि तुम यह पहले से जानते हो, सावधान रहो कि कहीं तुम भी अपनी दृढ़ता से न गिर जाओ। आत सावधान रहो, कहीं तुम न गिर जाओ। दुष्टों के बहकावे में न आओ, परंतु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहो। हमें जहां है वहीं नहीं रहना है, हमें अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ना है। मुझे याद है मैंने पहले मत्ती 6 पढ़ा है, मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 6 पद 9 से शुरू, यीशु ने कहा, इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्ग में रहने वाले पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य शीघ्र आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। आज हमें हमारी आवश्यकता का भोजन दे और हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हम उन लोगों को क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे बल्कि हमें शैतान से बचा। अब शाब्दिक रूप से यूनानी भाषा में पापों के स्थान पर ऋण शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप पर ऋण का पाप है जिसे क्षमा करवाना आवश्यक है। आपको इससे बाहर निकलना होगा। यदि आप सच्चे ईसाई हैं, तो आपको अभी भी विकास करना, पश्चाताप करना और परिवर्तन करना होगा। चलिए याकूब की पुस्तक का पहला अध्याय खोलते हैं, फिर हम दूसरे अध्याय में जाएंगे। याकूब ने याकूब के पहले अध्याय के 22वें पद में लिखा है, परंतु वचन के केवल सुनने वाले ही न बनो, अन्यथा तुम अपने आप को धोखा दोगे। क्योंकि जो वचन का केवल सुनने वाला हो न कि उस पर अमल करने वाला, वह उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने आप को देखता है, चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा मनुष्य था। जो की कहानी याद है, जो बाहर जाकर शराब पीता था और व्यभिचार करता था। पद 25, परंतु जो स्वतंत्रता के परिपूर्ण नियम को ध्यान से देखता है और उस पर चलता रहता है, और सुनने वाला तो है पर उस पर अमल भी करता है, वह अपने काम में आशीष पाएगा। अब अध्याय 2 में पद 8 से शुरू करते हैं। याकूब ने लिखा, यदि तुम शास्त्र के अनुसार राजसी नियम का पालन करते हो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, तो तुम अच्छा करते हो। परंतु यदि तुम पक्षपात करते हो, तो तुम पाप करते हो और व्यवस्था के अनुसार अपराधी ठहराए जाओगे। क्योंकि जो कोई पूरी व्यवस्था का पालन करे और फिर भी एक बात में ठोकर खाए, वह सब बातों में दोषी है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं, लेकिन इस एक चीज को मैं बदलने वाला नहीं हूं। मैं बदल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी जातीय पृष्ठभूमि, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरी सरकार और न जाने किन किन कारणों से ऐसा संभव है। पद 11, जिसने कहा व्यभिचार मत करो, उसने यह भी कहा हत्या मत करो। अब यदि तुम व्यभिचार न करके हत्या करते हो, तो तुम व्यवस्था के उल्लंघनकर्ता हो गए हो। इसलिए ऐसे बोलो और करो जैसे वे लोग हों जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वयं की परीक्षा करनी चाहिए, और प्रेरित पौलुस ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है। 1 कुरिन्थियों 11 में जाइए, पद 28 से शुरू कीजिए। वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा समय देता हूं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और फिर रोटी खानी और प्याला पीना चाहिए। क्योंकि जो अयोग्य तरीके से खाता पीता है, वह अपने ऊपर न्याय लाता है, क्योंकि वह प्रभु के शरीर को नहीं पहचानता। इसी कारण तुम में से बहुत से कमजोर और बीमार हैं, और बहुत से सो गए हैं या मर गए हैं। विवेकहीन होना। यीशु को हमारे पापों के कारण ही हमारे लिए बलिदान किया गया था। पद 31, क्योंकि यदि हम अपने आप को परखते तो हमारा न्याय न किया जाता। पौलुस मसीहियों से बात कर रहा था। हमें स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि परमेश्वर को हमारा मूल्यांकन करना पड़े और हमें बदलने के लिए विभिन्न तरीके न अपनाने पड़े। आगे उन्होंने कहा, परंतु जब हमारा न्याय होता है तो प्रभु हमें दंडित करते हैं, ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाए। हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है, उसके पीछे एक कारण होता है। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 तिमोथी 3:16-17 कहता है, सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और यह शिक्षा, बोध, सुधार और धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का मनुष्य परिपूर्ण हो और हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी। हमें परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए, उसे दर्पण की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, यीशु के उदाहरण को देखना चाहिए और अपने जीवन को उनके जैसा बनाने के लिए बदलना चाहिए। आइए यिर्मयाह अध्याय 10 में चलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बहुत समय से इस दुनिया में हैं, इसलिए उनका निर्णय हमेशा सही होता है। इस बात से सावधान रहें, बहुत से लोग खुद को धोखा देते हैं। यिर्मयाह 10:23 कहता है, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मनुष्य अपने वश में नहीं है, चलने वाले मनुष्य के बस में नहीं कि वह अपने कदमों को चलाए। पद 24, हे प्रभु, मुझे सुधार दे, परंतु न्याय से, अपने क्रोध से नहीं, ऐसा न हो कि तू मुझे नष्ट कर दे। आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपको सुधारे। आइए रोमियो अध्याय 8 खोले और पद 6 से पढ़ना शुरू करें। हम शैतान के प्रभाव में आ सकते हैं। रोमियो 8:06, क्योंकि शारीरिक सोच मृत्यु है,
परंतु आत्मिक सोच जीवन और शांति है, क्योंकि शारीरिक सोच परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता है। वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और नहीं हो सकती है। आत्म जो शरीर के वश में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यानी अगर परमेश्वर हमें अपना आत्मा देता है तो हम उसकी आज्ञा मान सकते हैं, और यह हमें बपतिस्मा लेने और सच्चे पश्चाताप के बाद मिलता है। पद 9, परंतु तुम शरीर में नहीं पर आत्मा में हो, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब यदि किसी के पास मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका नहीं है। यही मूलतः बाइबल के अनुसार मसीही होने की परिभाषा है। और यदि मसीह तुम में है तो पाप के कारण शरीर मरा हुआ है, परंतु धार्मिकता के कारण आत्मा जीवन है। जब परमेश्वर आपको पश्चाताप करने का अवसर देता है तो आप संसार के मार्ग का विरोध करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। आप अपने अतीत के पापों के कारण सच्चे और गहरे दुख से परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और उनके नियमों और जीवन शैली को स्वीकार करते हैं। बपतिस्मा के समय आपका पुराना स्वरूप दफन हो जाता है। एक सच्चा परिवर्तित व्यक्ति अपने जीवन को मसीह के अनुरूप ढाल लेता है। परिवर्तित व्यक्ति अब अपनी सांसारिक इच्छाओं पर विजय पाने का प्रयास करता है, शैतान और समाज के प्रलोभनों का विरोध करता है। आप परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। सच्चा पश्चाताप आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। यह एक आध्यात्मिक और भावनात्मक संकट है जो एक दर्दनाक और तीव्र पश्चाताप से उत्पन्न होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हमने न केवल गलत किया है बल्कि हम गलत हैं। सच्चे पश्चातापी व्यक्ति का हृदय झकझोर देता है। वे अपने शब्दों और कार्यों में व्याप्त छल और अहंकार को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके अच्छे कर्म भी अक्सर ईश्वर के क्रोध को शांत करने या स्वयं को दूसरों से बेहतर महसूस कराने के स्वार्थी प्रयास मात्र होते हैं। सच्चा पश्चाताप हमारे व्यक्तिगत पापों, उन बुरी आदतों के प्रति गहरी जागरूकता है जिनका हम आनंद लेते हैं और जिनसे हमें प्रसन्नता होती है, और जिनके लिए यीशु मसीह की क्रूर पीड़ादायक मृत्यु आवश्यक थी। आप इसके बारे में यशायाह 53 में पढ़ सकते हैं। सच्चा पश्चाताप केवल परमेश्वर के प्रति होता है, किसी और के प्रति नहीं। सच्चे पश्चातापी व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपने संबंध की चिंता करते हैं, न कि दूसरों के साथ अपने संबंध की। सच्चे पश्चाताप का अर्थ है परमेश्वर के वचन से भयभीत होना, जैसा कि मैंने यशायाह 66 में पढ़ा है। जब परमेश्वर बोलते हैं तो हमें सुनना चाहिए। हमें विनम्र और सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के पर्वों का पालन करने, दशांश देने, सांसारिक संगति से दूर रहने और परमेश्वर के मानकों पर खरा उतरने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह 1982 में गुड न्यूज पत्रिका में प्रकाशित "यही सच्चा पश्चाताप है" नामक लेख से लिया गया है। इस लेख का सारांश कहता है कि सच्चा पश्चाताप स्वार्थी, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणाओं से बदलने की एक गंभीर इच्छा है। सच्चा पश्चाताप वास्तविक जीवन, अनंत काल के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है। क्या आप ईश्वर की बात पूरी तरह सुनेंगे या आधी ही? क्या आप अब भी यही सोचते हैं, ठीक है, मैं इसे इस तरह देखता हूं? बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। मुझे अक्सर ऐसे लोगों से ईमेल मिलते हैं जो सोचते हैं कि कोई छोटी सी बात जिसे वे महत्वपूर्ण मानते हैं, ईश्वर के कार्य में सहयोग देने से ज्यादा जरूरी है। क्या आपने पश्चाताप किया है? क्या आपने सचमुच पश्चाताप किया है? यदि नहीं, तो बास्केटबॉल कोच ने अपने उस खिलाड़ी से जो कहा था जिसने गेंद चुराकर गलत बास्केट की ओर छलांग लगाई थी, वह बात आज भी लागू होती है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो, रुको, मुड़ो और दूसरी दिशा में जाओ। यही सच्चे ईसाई पश्चाताप का सार है। यह डॉक्टर बॉब थील है जो कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड की ओर से बोल रहे हैं।